Iran Radio Podcast.
दोस्तों, जो पॉडकास्ट आप सुन रहे हैं वो ईरान रेडियो द्वारा तैयार किया गया है। अगर आप दूसरे विषयों पर भी पॉडकास्ट सुनना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट iranradio.ir/hi पर सुन सकते हैं। फिलिस्तीन एक खाली इलाका था, वहाँ घास फूस के अलावा कुछ नहीं था और चारों तरफ खाक और धूल उड़ती रहती थी। दोस्तों, इसराइल के बारे में 10 मिथक पॉडकास्ट का ये दूसरा एपिसोड है। ईरान रेडियो से मैं हूँ अहमद अब्बास, आप सभी को मेरा सलाम। इस एपिसोड में हम इसराइल के बारे में एक दूसरे मिथक की पड़ताल करेंगे। हमने अपनी समीक्षा का आधार इसराइल के बारे में 10 मिथक किताब को बनाया है। ये दावा कि यहूदी एक ऐसा समुदाय था जिसका दुनिया में कोई वतन नहीं था, पिछले एपिसोड में हमने इस दावे की समीक्षा की थी कि फिलिस्तीन एक खाली इलाका था। ये दावा इस दावे के साथ किया जाता है कि यहूदियों का अपना कोई राष्ट्र या देश नहीं था। इन दोनों दावों से मिलाकर ज़ायोनियों ने एक मशहूर नारा बनाया ताकि फिलिस्तीन की भूमि पर कब्ज़ा करने के लिए एक अन्य तर्क पेश किया जा सके। वो मशहूर नारा है, अ लैंड विदाउट अ पीपल फॉर अ पीपल विदाउट अ लैंड, एक भूमि बिना लोगों की बिना भूमि वाले राष्ट्र के लिए। लेकिन यहाँ ये सवाल उठता है कि क्या यहूदी प्रवासियों को राष्ट्र का दर्जा प्राप्त था? इस सवाल का सबसे बेहतर जवाब श्लोमो सैंड की किताब द इन्वेंशन ऑफ द ज्यूइश पीपल में देखा जा सकता है। इसराइली इतिहासकार ने अपनी किताब में दावा किया कि आज के अक्सर यहूदियों के पूर्वज गैर यहूदी थे जिन्होंने धर्मांतरण किया था। सैंड का कहना है कि ईसाई जगत ने अपने हितों को साधने के लिए इतिहास के एक संवेदनशील मोड़ पर इस विचार का समर्थन किया कि यहूदी एक राष्ट्र हैं और उन्हें अपने असली वतन वापस लौट जाना चाहिए। इस दृष्टि से यहूदियों की पवित्र भूमि पर वापसी, मृतकों का पुनरुत्थान और ईसा मसीह की वापसी के साथ दुनिया का दैवय अंत हो जाएगा। ईसाइयों विशेष रूप से प्रोटेस्टेंटों के बीच 16वीं शताब्दी के बाद से धार्मिक सुधारों के रूप में जाने जाने वाले सहस्राब्दी के सिद्धांत और फिलिस्तीन लौटने पर यहूदियों के ईसाई धर्म में रूपांतरण के बीच एक नया दृष्टिकोण बनकर सामने आया। सहस्राब्दीवाद का अर्थ है ईसा मसीह की वापसी और उनका हजार साल का शासन का। 16वीं सदी के अंग्रेज पादरी थॉमस ब्राइटनेन ने भी इसी विचार का प्रतिनिधित्व करते हुए लिखा, क्या वे फिर से यरूशलेम लौट आएंगे? इससे अधिक निश्चित कुछ भी नहीं है। ईश्वरीय दूतों ने जहां कहीं जो कार्य भी किए वो इस मुद्दे का संकेत हैं और इसे दर्शाते हैं। बेल्जियम के एक लेखक चार्ल्स जोसेफ ने 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कहा था, मेरा मानना है कि यहूदियों का बाकी यूरोपीय लोगों के साथ तालमेल नहीं है। वो जहां भी जाएंगे हमेशा दूसरे राष्ट्र के भीतर एक राष्ट्र बना लेंगे। मेरे दृष्टिकोण से सबसे आसान काम उन्हें उनकी मातृभूमि वापस भेज देना है जहां से उन्हें बाहर निकाल दिया गया था, ताकि वे सभी वहां लौट जाएं। इससे स्पष्ट है कि ज़ायोनीवाद और पुराने यहूदी विरोधी विचारों के बीच एक स्पष्ट संबंध था। प्रसिद्ध फ्रांसीसी लेखक और राजनीतिज्ञ फ्रांकोइस रेने डी चेट्यूब्रियांड ने लगभग उसी समय लेजिटिमेट मास्टर्स ऑफ जूडिया पुस्तक लिखी। उनके विचारों ने नेपोलियन बोनापार्ट को प्रभावित किया, जिसने 19वीं शताब्दी की शुरुआत में मध्य पूर्व को जीतने की आशा की थी। इसके लिए उसने यहूदियों से भी मदद मांगी थी, इस वादे के साथ कि वे फिलिस्तीन लौट जाएंगे और वहां अपना एक देश बनाएंगे। इलन पेपे के अनुसार इन पुस्तकों और दस्तावेजों पर आधारित ज़ायोनवाद एक ईसाई औपनिवेशिक योजना थी, जो बाद में एक यहूदी औपनिवेशिक परियोजना बन गई। इस बात के बहुत ही भयानक और डरावने सबूत मौजूद हैं कि कैसे पौराणिक और धार्मिक मान्यताएं एक दूसरे देश को उपनिवेश बनाने और वहां के लोगों को बेदखल करने की वास्तविक योजना में बदल गई। ये भयावह योजना पहली बार 1820 के दशक में विक्टोरियन ब्रिटेन में सामने आई थी। उस समय एक मजबूत धार्मिक और शाही आंदोलन उभरा, जिसके तहत फिलिस्तीन पर नियंत्रण करने और उसे ईसाई जगत को वापस लौटाने की ब्रिटेन की रणनीतिक योजना के केंद्र में यहूदियों की फिलिस्तीन वापसी को सामने रखा गया। उन्नीसवीं शताब्दी के दौरान ये दृष्टिकोण ब्रिटेन में अधिक लोकप्रिय हो गया और इसने वहां देश की आधिकारिक नीति को प्रभावित किया। फिलिस्तीनी क्षेत्र दूर हो गए अपने बच्चों की वापसी और उनकी कृषि क्षमताओं के प्रयोग की प्रतीक्षा कर रहा है। एक बार फिर वैश्विक समृद्धि, गौरव और महानता के क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए ये फिर से वैसा ही हो जाएगा जैसा हजरत सुलेमान के शासनकाल में था। जो शब्द आपने सुने वे ब्रिटिश सैन्य कमांडरों में से एक के शब्द थे, लेकिन ये प्रक्रिया तब तक सफल नहीं हुई जब तक इसे संयुक्त राज्य अमेरिका का समर्थन हासिल नहीं हो गया। इतिहास के साथ ही इस तरह के विचारों की समीक्षा से पता चलता है कि इस आंदोलन के उपदेशकों में एक नाम शफ्ट्सबरी का है। माना जाता है कि अंग्रेज लेखक और राजनेता एंथोनी एशले शफ्ट्सबरी या सेवंथ अर्ल ऑफ शफ्ट्सबरी ने धार्मिक और सुधारवादी उत्साह के खतरनाक मिश्रण को 1917 में बालफोर घोषणा पत्र में बदल दिया। शफ्ट्सबरी पवित्र भूमि पर यहूदियों की वापसी के समर्थक थे। वो 1848 से 1885 में अपनी मृत्यु तक लंदन यहूदी एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे। वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि फिलिस्तीन में यहूदियों की वापसी का समर्थन करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि ब्रिटेन को फिलिस्तीन की भूमि हड़पने में सक्रिय रूप से उनकी मदद करनी चाहिए। शफ्ट्सबरी ने ब्रिटिश सरकार को, यरूशलम सामुदायिक संगठन को इस योजना के लिए प्रारंभिक धन उपलब्ध कराने के लिए राजी किया। निसंदेह उनकी सफलता पर ब्रिटिश विदेश मंत्री और प्रधानमंत्री के दामाद होने के प्रभाव को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने तत्कालीन ब्रिटिश विदेश मंत्री पामर्सन की बेटी से शादी की थी। शफ्ट्सबरी ने जनवरी 1839 में प्रकाशित हुए अपने लेख यहूदी देश और पुनर्स्थापना में चुने हुए लोगों के लिए एक नए युग की भविष्यवाणी की। इस लेख में फिलिस्तीन में यहूदियों को बसाने को एक महान ब्रिटिश राजनेता का सपना करार दिया गया था। इस लेख में उन्होंने जोर देकर कहा, यहूदियों को बड़ी संख्या में फिलिस्तीन लौटाने और एक बार फिर इस सरजमीन का स्वामी बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। हालांकि वे अब जिद्दी लोग हैं जिनके दिल काले पड़ गए हैं, नैतिक पतन, जिद और इंजील को नज़रअंदाज करना उनकी आदत बन गई है। इसके बावजूद वे मुक्ति प्राप्त करने योग्य हैं। उन्हें फिलिस्तीन लौटकर ईसा मसीह के पुनः प्रकट होने के लिए मंच तैयार करना चाहिए। तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड पामर्सन के साथ मिलकर शफ्ट्सबरी की लॉबिंग, जो शफ्ट्सबरी के ससुर थे, परिणामहीन नहीं रही। कुछ समय बाद पामर्सन फिलिस्तीन में यहूदियों को बसाए जाने के कट्टर समर्थक बन गए। हालांकि उनका ये समर्थन राजनीतिक कारणों से था, ना कि धार्मिक कारणों से। एक दृष्टिकोण ये था कि यहूदी उस्मानी शासन को उखाड़ फेंकने में उनकी मदद कर सकते हैं, इसलिए इस मुद्दे को ब्रिटिश विदेश नीति के एजेंडे में जगह दी गई। अगस्त 1840 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने इस्तांबुल स्थित ब्रिटिश राजदूत को पत्र लिखा कि यहूदियों को फिलिस्तीन लौटने की अनुमति देना उस्मानियों और ब्रिटिशों दोनों के लिए पारस्परिक रूप से फायदेमंद होगा। विडंबना यह है कि इस पत्र में उस्मानी साम्राज्य को विघटन से बचाए रखने के लिए यहूदियों की वापसी को एक महत्वपूर्ण साधन बताया गया था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने इस पत्र में लिखा था कि यहूदियों को फिलिस्तीन में लौटने और रहने के लिए प्रोत्साहित करने से इस क्षेत्र में धन आएगा और निवेश बढ़ेगा, जिससे सुल्तान और उस्मानी साम्राज्य के क्षेत्रीय संसाधनों में वृद्धि होगी। विचार काफी लुभावना था। ये धोखा कि अगर यहूदियों की संपत्ति फिलिस्तीन में लाई गई तो संभावित आंतरिक और बाहरी दुश्मनों के खिलाफ उस्मानी साम्राज्य की स्थिति मजबूत हो जाएगी, लेकिन इस विचार के मूल में ये सच्चाई नहीं थी कि कैसे ज़ायोनीवाद ब्रिटिश साम्राज्यवाद और यहूदी ईसाई धार्मिक विश्वासों से जुड़ा हुआ है, जो ईसा मसीह के पुनः प्रकट होने के लिए भूमि प्रशस्त करने की बात करते हैं। इसी कारण काउंट ऑफ शफ्ट्सबरी को 19वीं सदी में ज़ायनी ईसाई धर्म के अग्रणी सिद्धांतकार और पहले महान राजनेता के रूप में याद किया जाता है, जिन्होंने फिलिस्तीन में यहूदियों के लिए एक देश का गठन करने का रास्ता हमवार करने की कोशिश की। हालांकि पेपे समकालीन ज़ायनीवाद की तुलना 19वीं शताब्दी में यहूदियों के साथ जो कुछ घटा उसके साथ करने में कुछ हद तक सतर्क है। उनका मानना है कि हमें आज के ज़ायनीवाद को 19वीं सदी की विचारधारा के परिप्रेक्ष्य में पढ़ने को लेकर सतर्क रहना चाहिए। हालांकि इस घटना में वे सभी घटक शामिल थे जिन्होंने बाद में इन विचारों को फिलिस्तीन के मूल निवासियों को उनके वतन से बाहर निकालने और उनके मूल अधिकारों का हनन करने के औचित्य में बदल दिया। बहरहाल 1838 में यरूशलेम में ब्रिटेन का पहला वाणिज्य दूतावास खुल गया। वाणिज्य दूतावास का अनौपचारिक एजेंडा यहूदियों को फिलिस्तीन आने के लिए प्रोत्साहित करना था। वाणिज्य दूतावास ने उन्हें इस संबंध में सुरक्षा का वादा किया। कुछ मामलों में ईसाई धर्म में उनका धर्मांतरण कराने की भी कोशिशें की गईं। यरूशलेम में पहले ब्रिटिश वाणिज्य दूतावास में से सबसे प्रसिद्ध नाम जेम्स फिन का है। फिन के व्यक्तित्व और प्रत्यक्ष भागीदारी ने इस योजना से किसी हद तक पर्दा उठा दिया। जेम्स फिन ने फिलिस्तीन में यहूदियों की वापसी और इस वापसी के परिणाम स्वरूप फिलिस्तीनियों के संभावित स्थानांतरण के बीच संबंध के बारे में खुलकर लिखा। ऐसा करने वाले वे संभवतः पहले व्यक्ति थे। अगली सदी में ये संबंध ज़ायनी औपनिवेशिक परियोजना का केंद्र बिंदु बन गया। औपनिवेशिक उपनिवेशवाद, जिसे अवैध बस्तियाँ बसाना भी कहा जाता है, अन्य प्रकार के उपनिवेशवाद से इस मायने में भी अलग है कि इस प्रकार के उपनिवेशवाद में उपनिवेशवादी राजनीतिक शक्ति को नियंत्रित करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि मूल निवासियों को खदेड़कर उपनिवेशवादी खुद वहां बस जाते हैं। फिन 1845 से 1863 तक कुद्स में तैनात थे। बाद में ज़ायनी इतिहासकारों ने यहूदियों को फिलिस्तीन में बसने में मदद करने के लिए उनकी प्रशंसा की। यरूशलेम में पश्चिमी लोगों को बसाने के लिए फिन ने किसी भी अन्य यूरोपीय से अधिक सक्रिय रूप से काम किया। इस प्रकार ईसाई मिशनरियों द्वारा संगठित व्यापारिक हितों और सरकारी संस्थाओं की गतिविधियों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीनें खरीदी गईं। उस समय ज़ायनीवाद एक ऐसा आंदोलन था जिसका दावा था कि फिलिस्तीन पर कब्जा करके और वहाँ एक यहूदी राष्ट्र की स्थापना करके यूरोपीय यहूदियों की समस्याओं का समाधान निकाला जा सकता है। इसीलिए यहूदी नेताओं ने ज़ायनीवाद को विश्व स्तर पर मान्यता मिलने का भी इंतजार नहीं किया। 1882 से ही उन्होंने फिलिस्तीन में बसना शुरू कर दिया। ज़ायनीवाद की विशेष शब्दावली में आप्रवासन की इस लहर को पहला चरम कहा जाता है, यानी फिलिस्तीन में ज़ायनी आप्रवासन की पहली लहर जो 1904 तक जारी रही। दूसरी लहर पहली लहर से अलग थी। दूसरी लहर में कम्युनिस्ट और समाजवादी भी शामिल थे, जो अब न सिर्फ ज़ायनीवाद को यहूदी समस्याओं के समाधान के रूप में देखते थे, बल्कि ये भी मानते थे कि फिलिस्तीन में एक साझा मातृभूमि ज़ायनीवाद साम्यवाद और समाजवाद के लिए एक तीर की नोक की तरह होगी। उसके बाद ज़ायनीवाद को एक ताकतवर समर्थक की ज़रूरत थी, क्योंकि धीरे धीरे फिलिस्तीनी समझने लगे थे कि प्रवासन की ये शैली भविष्य में उनके वतन के लिए समस्याएं उत्पन्न कर सकती हैं। स्थानीय नेताओं का भी मानना था कि प्रवासन की इन लहरों का उनके समाज पर बहुत नकारात्मक असर पड़ने वाला है। कुद्स के मुफ्ती उन लोगों में से एक थे जिन्होंने महसूस किया कि यहूदियों के कुद्स में अप्रवासन और यूरोपीय लोगों द्वारा उनके देश की इस्लामी पहचान के अपमान के बीच एक संबंध है। اسی لیے انہوں نے اندھا دھند یہودی اپرواسن کے خلاف مکھرتا سے آواز اٹھائی۔ انہوں نے وشیش روپ سے فلسطین میں رہنے والے عربوں کی زمین بیچنے سے روکنے پر زور دیا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ زمین کے سوامتو کا دعویٰ مالک کے پکش میں ہوگا، لیکن اگر اپرواسی زمین نہیں خریدتے ہیں تو انہیں قانونی درشتے سے استھائی تیرتھ یاتری ہی مانا جائے گا۔ لیکن یہ قدم اٹھانے اور لوگوں کا دھیان اس مدعے کی اور کھینچنے میں بہت دیر ہو گئی تھی۔ 2 نومبر 1917 کو بالفور گھوشنا پتر کے سارجنک ہونے کے بعد فلسطینیوں اور دنیا بھر کے برٹین اور زائنیوں کے بیچ گٹھ بندھن کے بارے میں پتہ چلا۔ بالفور گھوشنا پتر برٹش ودیش منتری دوارا برٹش یہودی سمودائے کے نیتاؤں کو لکھا گیا ایک پتر تھا، جس میں فلسطین میں یہودی راشٹر کے نرماڑ کے لیے پورن سمرتھن کا وعدہ کیا گیا تھا۔ اس گھوشنا پتر کی پرشٹھ بھومی میں عیسیٰ مسیح کی واپسی اور دنیا پر ان کے 1000 سال کے شاسن کال میں وشواس اور اسلامو فوبیا کا سنیوجن تھا۔ تتکالین برٹش پی ایم ڈیوڈ لائڈ جارج، جو ایک کٹر عیسائی تھے، اپنے دھارمک سدھانتوں کے آدھار پر فلسطین میں یہودیوں کی واپسی میں روچی رکھتے تھے۔ جارج اور ان کے ساتھی پوتر بھومی میں رننیتک درشٹی کون سے ایک مسلم راشٹر کے بجائے ایک یہودی راشٹر یا کالونی کو پراتھمکتا دیتے تھے۔ برٹین میں کئی نرلے نرماتاؤں کا ماننا تھا کہ مسلمانوں کی سرزمین فلسطین میں ایک یہودی راشٹر کے نرماڑ کا وچار اس کھیتر میں برٹین کے رننیتک ہتوں کے انروپ ہے۔ اس لیے جب پرتھم وشیدھ میں انگریزوں نے فلسطین پر قبضہ کر لیا تو ان کے اور یہودیوں کے بیچ گٹھ جوڑ سے یہودیوں کو یہودی راشٹر کے نرماڑ کا موقع مل گیا۔ فلسطین پر سینے قبضے نے 3 الگ الگ پروتیوں کو ایک ساتھ لا دیا، یعنی زائنیواد، پروٹیسٹنٹ سہسترابدیواد اور برٹش سامراجیواد کا فلسطین میں ایک ساتھ پرویش ہوا۔ ان 3 وچارداراؤں کے ایک ساتھ آنے سے آگے چل کر اس دیش کا ستیہ ہو گیا۔ کچھ شوتکرتا پوچھتے ہیں کہ کیا 1918 کے بعد فلسطین میں زائنیوں کے روپ میں بسنے والے یہودی واسطو میں انہی یہودیوں کے ونشج ہیں جنہیں 2000 سال پہلے رومن سامراج نے فلسطین سے نشکاست کر دیا تھا۔ تب سے اسرائیلی ویگیانک رومن کال کے دوران فلسطین میں رہنے والے یہودیوں اور آج فلسطین جا کر بسنے والے یہودیوں کے بیچ آنوونشک سمبندھ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، پھر بھی وہ پوری طرح یہ ثابت نہیں کر سکے ہیں اور اس میں سندیہ آج بھی برقرار ہے۔ پیپے آگے کہتے ہیں کہ کسی راشٹر کے لیے سوئم کا آوشکار کرنا کوئی سمسیا نہیں ہو سکتی، لیکن یہ بات اس سمے گمبھیر سمسیا بن جاتی جب اس راشٹر کی اتپتی کی کہانی دوسرے راشٹر کے نرسنہار، نسلی صفائے اور اتپیڑن جیسے امانوی اتیاچاروں کے آدھار پر لکھی جائے۔ ان کا ماننا ہے کہ آج مہتوپورن بات یہ ہے کہ زائنی شاسن خود کو دنیا کے سبھی یہودیوں کا پرتندھی مانتا ہے اور وہ جو کچھ بھی کرتا ہے وہ ان کے لیے یا ان کی اور سے ہوتا ہے۔ 1967 تک اس دعوے نے اسرائیل کو کافی فائدہ بھی پہنچایا۔ جب بھی اسرائیل کی نیتیوں پر آنچ آتی تھی یہودی اور خاص طور پر امریکی یہودی اس کے بچاؤ میں میدان میں کود پڑتے تھے، لیکن اب حالات کافی بدل رہے ہیں اور لوگوں کو کافی کچھ سمجھ میں آنے لگا ہے۔ آج دنیا اس ذہنی دعوے کے بارے میں زیادہ آشوست نہیں ہے۔ یہودی بنا سرزمین والا ایک سمودائے ہے۔ یہ بات شافٹسبری، فن، بالفورڈ اور لائٹ جارج کو اس لیے پسند آئی تھی کیونکہ اس سے برٹین کے ہت سرکشت ہو رہے تھے اور فلسطین میں اسے پیر زمانے کا موقع مل رہا تھا۔ لیکن دھیرے دھیرے جب یہ وچار اپنا مہتو کھوتا گیا تو انہوں نے فلسطین کی بھومی کو چھوڑنے کا نرڑے کیا۔ یہودی بنا بھومی کے ایک راشٹر نہیں تھے اور نہ ہی فلسطین کوئی خالی اور غیر آباد بھومی تھی۔ ہاں، ایک بھیاوہ ایتہاسک پرکریا کے ذریعے فلسطین کو ہڑپ لیا گیا۔